ओम शांति।
संबंध थे, कार्यक्षेत्र था, जीवन था, वो बेहद के बाप के बनने से ही बेहद का हो जाता है। और जब हमारा संपर्क, सेवा, संबंध बेहद का हो जाता है तो उसमें साक्षीपन बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब कोई चीज बेहद की बन जाती है तो उसमें हमें वैरायटी बहुत मिलती है, विविधता हमें प्राप्त होती है, और उस विविधता के विस्तार में अगर मुझे स्वयं को लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखना है तो साक्षीपन का भाव बहुत जरूरी है। जिस साक्षीपन की धारणा से विस्तार की विविधता को देखते हुए भी हम अपने लक्ष्य से भटक नहीं जाएंगे। हमारा जो कोर्स है, मार्ग है, लक्ष्य के प्रति जाने की जो राह है, उसमें केंद्रित होकर हम चलते रह सकेंगे और साथ साथ उस विस्तार की विविधता का आनंद भी ले सकेंगे। अगर ये साक्षीपन नहीं है तो वही विस्तार और वही विविधता मुझे कंफ्यूज भी कर सकती है और व्यर्थ में भी ले जा सकती है। व्यक्तिगत जीवन में हम स्वयं होते हैं और हमारे अपने छोटे से संबंध होते हैं, लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो हम व्यक्ति न रहकर संस्था बन जाते हैं, विशाल संबंध संपर्क में आ जाते हैं। तो नेचुरली पहले नहीं जानते हैं उतनी बेहद की बातों का, आत्माओं के विविध भाव, स्वभाव, संस्कार, पुरुषार्थ की रफ्तार का हमें पता चलता है। तो साक्षीपन नहीं है, हम ज्यादा संबंध के भाव, पारिवारिक भाव में आ जाते हैं तो हम एक दो की बात में ज्यादा चले जाते हैं और उसके कारण हम एक दो में इंटरफियर करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, दो चीजें, भारत की संस्कृति और विदेश की संस्कृति। जहां भारत में हमें पारिवारिक प्यार और सहयोग प्राप्त होता है, वहां हमें एक दो में इंटरफियरेंस भी ज्यादा प्राप्त होता है, अनावश्यक एक दो के जीवन में बातों में माथा मारना और उसमें इंटरफियर करना, ये नेचर भी हमें भारतीय जीवन पद्धति में मिलेगी। विदेश में आप देखेंगे कि वहां पारिवारिक प्यार नहीं है, संबंधों का स्नेह नहीं है, इंडिविजुअलिज्म है, हर कोई अपने आप में स्वतंत्र रह के जीना चाहता है। लेकिन वहां फिर एक दो की व्यर्थ की पंचायत भी नहीं है, माथाकुटी भी नहीं है, एक दो की बात में वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये भी है। तो यहां हमें साक्षीपन भारतीय जीवन में बहुत उपयोगी होता है कि एक तरफ तो बाबा ने इसको हमें परिवार बना के दिया ताकि उस आत्मीयता के साथ प्यार के साथ हम एक दो के साथ चले, लेकिन वहां ही बाबा ने हमें साक्षीपन की भी धारणा करवाई ताकि ये प्यार व्यर्थ की बात में न जाए, एक दो के जीवन में ज्यादा माथा मारने की वृत्ति हमारे अंदर न आ जाए, जिसको सरल शब्दों में बाबा कहते हैं कि न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस, आपस में प्यार भी रहे लेकिन हम न्यारे भी रहे, ताकि एक दो की व्यर्थ में हमारी बुद्धि न जाए, क्योंकि आखिर हम सभी पुरुषार्थी हैं, परफेक्ट तो नहीं है, तो नेचुरली मेरी कोई कमी कमजोरी होगी, आपकी कोई कमी कमजोरी होगी, साथियों की कोई कमी कमजोरी होगी, हम नंबरवार है, वैरायटी पुरुषार्थी है, वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले हैं। बाबा के शब्दों में वन वन की काठी है, एक ना मिले दूसरे से है। अगर सिर्फ हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी लें या लौकिक परिवार की दृष्टि से भी लें, तो भी हम सबका निश्चय पुरुषार्थ, हम सबका ज्ञान योग सहयोग सेवा, सब कुछ वैरायटी है, अलग अलग है, अपना अपना है। आप अनुभव करते होंगे, पूरा ही परिवार ज्ञान में चलता है, उसमें भी वैरायटी होगी, कोई एक पूरी सच्चाई से चलना चाहता होगा, एक गड़बड़ गड़बड़ करना चाहता होगा, एक बहुत समीपता से चलने चाहते होंगे, एक थोड़ा बहुत चलना चाहते। पूरा परिवार ज्ञान में है तो भी हरेक का अपना अपना है। तो वहां हमें बाबा ने कहा है कि भल हम उस आत्मिक स्नेह से चले, ताकि वो आत्मिक स्नेह हमारी नंबरवार स्थिति, विविध पुरुषार्थ की स्थिति को माइंड नहीं करने दे, हम प्यार से मिलके चल सके। अब चारों तरफ से बाबा ने जो हम सबको इकट्ठा किया है और हमें लक्ष्य दिया है कि हमें सबको मिलकर दो कार्य करने हैं। ये संगठन बाबा ने हमारा किस लिए बनाया है? बाबा हमें ये भी कह सकते थे ना कि भी सत्य ज्ञान हरेक को मिल गया है, अब हरेक व्यक्तिगत अपनी अपनी रीति से घर में बैठ के पुरुषार्थ करो। लेकिन बाबा ने हमें इसको पारिवारिक रूप दिया, संगठन बना कर दिया, क्योंकि हमें दो लक्ष्य पूर्ण करने हैं। एक लक्ष्य हमें बाबा ने ये दिया है कि हम आपस में मिलकर ऐसा पुरुषार्थ करें जो अपने आप को संपूर्ण बना सके। एक अकेला अपने आप संपूर्ण नहीं बन सकता है, द्वापर से लाखों निकले घर बार छोड़ के संन्यास किया, एक ही लक्ष्य से भगवान को पाना है, आत्म शुद्धि करनी है, परमात्मा मिलन करना है, अकेले अकेले कितने निकले और एक शुद्ध लक्ष्य से। लेकिन एक अकेला विकारों पर पूर्ण विजय नहीं पा सकता है, इसलिए बाबा ने संगठन बनाया कि एक दो के सहयोग से हम अपने आप को, खुद को हरेक संपूर्ण बनाए। और हमारे सामने दूसरा लक्ष्य भी बाबा ने दिया है कि केवल हमें अपने आप को नहीं बनाना है, स्वकेंद्री नहीं बनना है, लेकिन खुद को बनाते हुए हमें बाबा के कार्य को भी संपन्न करना है। विश्व कल्याण का जो कार्य है वो भी हमें संपन्न करना है। तो आप देखिए, ये दोनों चीज ऐसी है, स्वयं को संपूर्ण बनाना है, माना वो स्व में केंद्रित करता है, न्यारा बनाता है, और विश्व कल्याण का कार्य भी संपन्न करना है, वो हमें सर्वभाव में ले जाता है, विस्तार में ले जाता है, प्यार के संबंध में ले जाता है। तो शुरू से ये दो लक्ष्य बाबा ने दिए हैं, लेकिन ये दोनों लक्ष्य को प्रैक्टिकल में संपन्न करते हुए चलने के लिए ये साक्षीपन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी धारणा से हरेक के पुरुषार्थ को देखते हुए, हरेक के वैरायटी भाव स्वभाव को देखते हुए, हम अपने आप को डिस्टर्बेंस से मुक्त रख सके। अगर हम थोड़ा भी अटैचमेंट से चलते हैं, अटैचमेंट भी ना कहे, आपस में थोड़ा भी कॉमन रीति से चलते हैं, साधारण रूप में रहते हैं और चलते हैं, तो भी हमें एक दो के भाव स्वभाव संस्कार पुरुषार्थ की वैरायटी हमें डिस्टर्ब करती है, हमारे चिंतन में वो बातें आती है, ये ऐसा क्यों करता है, ये क्लास में ऐसे क्यों बैठते हैं, ये योग में ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं सेवा करते, ये क्यों नहीं नियमित आते हैं, ये पुराने होते हुए ऐसे क्यों हैं, आजकल के नए ऐसे ही होते हैं करके हमें एक दो के प्रति कई व्यर्थ के विचार चल सकते हैं, हम अपने आप में कई डिस्टर्बेंस का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा ये याद रखें अपने मूल दोनों लक्ष्य कि बाबा ने हमें इकट्ठा किस लिए किया है। इसलिए नहीं किया है कि हम एक दो के समीप आकर एक दो के ही अवगुण देखते रहे। बाबा ने इतने विश्व के कोने कोने से हमें चुना और हमें एक परिवार में बांधा है, समीप लाया है। वो इसलिए नहीं लाया है कि हम एक दो की कमजोरियों को देखें। हमें बाबा ने किस लिए मिलाया, किस लिए साथ लाया, इसलिए हमें समीप लाया है। वो दो लक्ष्य हम सदा याद रखें कि या तो हमें एक दो के सहयोग से सेवा कंप्लीट करनी है या अपनी स्थिति को संपूर्ण बनाना है। हमें इन दो लक्ष्यों के लिए एक दो के समीप संबंध में रहना है और कोई बातों के लिए नहीं। और हमें ये पक्का रहे कि भल ये परिवार है लेकिन ये अलौकिक परिवार है। हमारे एक दो के साथ संबंध लौकिक कारणों से नहीं है, इसलिए एक दो के लौकिक जीवन की बातें, प्रसंग, धंधा, घर की बातें, उसमें हमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हमें एक दो के साथ अलौकिक बनकर ही चलना है, नहीं तो ड्रामा अनुसार देह संबंध से जिनके साथ हम जुड़े हैं वो तो हमारी बुद्धि में है ही, ऊपर से इतने सारे बड़े परिवार की बातें भी हमारी बुद्धि में रहने लगेगी तो हम एकाग्र कैसे हो सके। तो इस बेहद के परिवार के साथ, क्योंकि मैं इसलिए बेहद के परिवार की ज्यादा बात कर रही हूं कि हम लौकिक से वैसे भी न्यारे हो गए हैं, हमारे नियम, संयम, मर्यादाएं, हमारी दिनचर्या और हमारा लक्ष्य अब ऐसा है कि हम ऑटोमेटिक लौकिक सांसारिक संबंधों में न्यारा ही हो गए हैं। वहां हमारा निमित मात्र ही संबंध रहा है, अब हमारा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ब्राह्मण परिवार में रहा है। अब हमारा दिन रात उठना, बैठना, करना, संग साथ ईश्वरीय परिवार से है, इसलिए अब ये परिवार जब बेहद का होता जा रहा है और हम प्रैक्टिकली एक दो से ज्यादा इन्वॉल्व है तो यहां हमें साक्षीपन ज्यादा चाहिए, ताकि ये बेहद का परिवार, सेवा और संबंध हमारे मन को विस्तार में न ले जाए, ज्यादा विचारों में या व्यर्थ में हम न चले जाए। इसलिए पहले से हम पक्का रखें कि भल हमें साथ रहना है, रोज साथ बैठ के पढ़ना है, साथ मिलके सेवा करनी है, लेकिन हमारे आपस में व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ये हमारे व्यक्तिगत हिसाब के संबंध नहीं है, ये संबंध बाबा के कारण है। कई बार क्या होता है, बाबा के कारण हम आपस में मिले हैं तो बाबा और ही एक तरफ रह जाता है और हम ही आपस में ज्यादा जुड़ जाते हैं, हम ही आपस में खास मित्र बन जाएंगे, संबंध में आ जाएंगे, ज्यादा एक दो के घर की जीवन की लौकिक अलौकिक बातों में हमारा ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है। तो बाबा एक तरफ, बाबा साक्षी हो जाता है और हम जुड़ जाते हैं। तो ये एक निशानी है कि जहां हमें एक दो के आपस में विचार ज्यादा चलते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि बाबा से निमित्त मात्र हो गया है और आपस में सर्वस्व हो गया है। होना ये चाहिए कि बाबा मेरा सर्वस्व है, बाकी सब कुछ निमित्त मात्र है। और निमित्त मात्र केवल लौकिक नहीं, अलौकिक परिवार का विस्तार भी मेरे लिए निमित्त मात्र है। लेकिन कई बार हमारा आपस में इतना लौकिक टाइप का संबंध हो जाता है, क्योंकि हम रोज साथ रहते हैं ना, इसलिए इतने साधारण रीति से आपस के संबंध में आ जाते हैं कि बाबा निमित्त मात्र हो जाता है और परिवार सर्वस्व हो जाता है। आपस में हमारे संबंध खास हो जाते हैं, बाबा हमारे लिए जनरल हो जाता है। तो ये एक अटेंशन हमें इस ईश्वरीय जीवन में रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम जिस ध्येय से आए हैं उस ध्येय की दिशा में सदा चलते रहे। हम दुनिया को छोड़ के इसलिए बाबा के बने हैं कि हम एक भगवान में मग्न हो जाएं, वो मुझे निरंतर याद रहे, उनके सिवाय और कहीं मेरी बुद्धि न जाए। इसके लिए तो हमने देह और देह के संबंध और दुनियावी शौक मौज रस सब बातों का हमने त्याग किया, तो अंत तक वही मेरा लक्ष्य बना रहे और मेरे कदम उनके प्रति ही आगे बढ़ते रहे। उसके लिए जरूरी है कि अब मैं जहां हूं, पहले मैं वहां थी, दुनिया में थी, देह संबंधों में थी, लौकिक संबंधों में थी, सांसारिक संबंधों में थी, लेकिन अब मैं जहां हूं, जिस अलौकिक परिवार में हूं, वहां भी मेरी अवेयरनेस इतनी रहे कि मैं आपस में कहीं जुड़ न जाऊं, मेरी डिटैचमेंट बनी रहे। और आप अनुभव करेंगे कि जिन संबंधों में अलौकिकता है, रूहानियत है, दिव्यता है, वहां आप एक दो की व्यर्थ बातों में नहीं जाएंगे। अपने आप एक न्यारापन बना रहता है। और उसके लिए मुख्य साधना हमारी यही चाहिए, अंदर से जो बाबा हमें रोज सिखाता है कि देह से न्यारापन, सर्व से न्यारा होने के लिए, सर्व परिस्थितियों में साक्षीपन लाने के लिए अभ्यास हमें करना है स्वयं से न्यारा रहने का। आप अपने आप सबसे साक्षी हो जाए। जब आप देह से डिटैच रहेंगे तो दुनिया से स्वतः साक्षी हो जाए, कोई मेहनत नहीं लगी। भक्ति में क्यों कठिन हुआ? क्योंकि वो दुनिया से न्यारा होने की कोशिश करते रहे, इसलिए दुनिया छोड़ी, घर बार छोड़ा, कितना दमन किया कर्मेंद्रियों का, ढंग से खाना पीना पहनना ओढ़ना वो भी उन्होंने छोड़ा। इतना कठिन पुरुषार्थ उन्होंने इसलिए लगा क्योंकि वो बाहर से न्यारे होने के पुरुषार्थ करते रहे, और बाबा ने हमें मूल और सहज पुरुषार्थ बता दिया कि विस्तार से, जो दुनिया का विस्तार है, व्यक्तियों का विस्तार है, प्रवृत्तियों का विस्तार है, साधनों का विस्तार है, टोटल विस्तार से जो हमारे संबंध है वो शरीर के द्वारा है। इसलिए देहभान से डिटैच होते हैं तो ऑटोमेटिक हम इतने बेहद की दुनिया, व्यक्ति, वैभव, परिस्थितियां, हर क्षण के दृश्य सबसे हम स्वतः साक्षी हो जाते हैं। और जब साक्षी पन की स्थिति में सर्व से हमारा अंदर से न्यारापन है और हम देहभान से न्यारे आत्मभान की स्थिति में है, तो हमारे व्यर्थ का जो खाता है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, नहीं के समान हो जाएगा। क्योंकि व्यर्थ का कनेक्शन विस्तार से है, समर्थ का कनेक्शन सार से है, और सार क्या है? मैं बिंदु और बाबा बिंदु, सार हमारे समग्र पुरुषार्थ का यही है। तो बाबा ने हमें वो सहज विधि सिखाई, और साक्षीपन होने से, अंदर की स्थिति न्यारी साक्षी होने से, जो भी बात आपके सामने आएगी या जो भी बात आप देखेंगे, चाहे परिस्थिति देखेंगे चाहे व्यक्ति को देखेंगे, क्योंकि परिस्थितियां या तो व्यक्ति सर्जित है या प्रकृति निर्मित है, दो कारण से परिस्थितियां हमारे सामने जो आती है या तो वो व्यक्ति के द्वारा निर्मित होती है या तो प्रकृति से सर्जित होती है, निर्मित होती है। तो जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आएगी, लेकिन हमारी स्थिति अंदर से न्यारी, परिणाम स्वरूप साक्षी भाव की होने के कारण हम बहुत एक्यूरेट रीति से उनको देख सकेंगे। हमारा विवेक यथार्थ परख सकेगा और यथार्थ निर्णय ले सकेगा। कई बार हम यथार्थ इसलिए नहीं परख सकते हैं, यथार्थ निर्णय हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम स्वयं उस दृश्य से, उस घटना से, उस परिस्थिति में हम खुद ही इन्वॉल्व हो जाते, हमारा अपना ही डिटैचमेंट नहीं रहता है। इसलिए हम उनको एक्यूरेट परख नहीं सकते। मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं और ड्राइवर फास्ट ट्रेन को ले जा रहा है, दूर से आपको नदी दिखाई देती है और दूर से ऐसे ही लगता है कि अभी ये ड्राइवर ट्रेन को ले जाके नदी में डाल देगा, जैसे नदी में ही हमारी ट्रेन जा रही, अभी हम जाके नदी में सारी ट्रेन गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही हम नदी के नजदीक आते हैं, एक बहुत सुंदर पुल, ब्रिज उस नदी को पार करने के लिए बना हुआ हमें दिखाई देता है। तो इन्वॉल्व होके जब हम कोई परिस्थिति को देखते हैं तो हमें वो एक मुसीबत लगता है कि बस अब तो हम मर गए, बहुत भारी बात हमारे सामने आ गई, अब तो हमारा मौत हो गया, हमारे सहने से ये चीज बाहर है, बहुत बड़ा विघ्न आ गया, परीक्षा आ गई। लेकिन अगर आप अंदर से न्यारे साक्षी भाव की स्थिति में हैं, तो आप उस परिस्थिति के आने का कारण भी समझ जाएंगे, मन आपकी समझ में आएगा और उसके निवारण का रास्ता भी हमें मिल जाएगा। इतना डिटैचमेंट और साक्षीपन की स्थिति से हमें फायदा है, क्योंकि साक्षी होने से हमारे मन की स्थिति स्पष्ट और श्रेष्ठ रहती है। उसके कारण हर परिस्थिति को पार करने की विधि या उस समस्या का सॉल्यूशन हमें अपने आप ही बुद्धि में टच होता है, बल्कि हम अपने में ये अनुभव करेंगे कि बात आई भी नहीं और पार करने की विधि बुद्धि में आ गई। तो ऐसे लगता है जैसे बाबा के बनने से, बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से एक ऐसी स्टेज पर बाबा ने हमें अंदर से स्थित कर दिया है जहां कोई परिस्थितियां ही नहीं, कोई मुसीबतें ही नहीं, कोई बातें ही नहीं है, इतना सहज हमें महसूस होगा, हम अनुभव कर सकेंगे प्रैक्टिकल में जो बाबा कहते हैं कि ड्रामा के हर सीन में कल्याण है, ये प्रैक्टिकल हम अनुभव कर सकेंगे कि सचमुच हर परिस्थिति हमें क्या सिखाने के लिए आई है। अगर उस समय मैं अपने आप से न्यारी नहीं हूं, चाहे मेरी सेवा से, मेरी पोजीशन से, मेरी अचीवमेंट्स इस ब्राह्मण जीवन के अंदर या लौकिक जीवन के अंदर, जो भी नाम मान शान स्थान प्रसिद्धि प्रतिष्ठा ज्ञान बुद्धि विशेषताएं जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है या मैंने किया है, लेकिन उसमें अगर मैं डिटैच हूं, निमित्त भाव है, न्यारापन है मेरे अंदर, तो मुझे वो बातें जो सामने आएगी, वो बातें या परीक्षा लगेगी ही नहीं। जो मुझे मुश्किल लग रहा था, पेपर लग रहा था, वही दृश्य। अगर मैं इन सब बातों में निमित्त और न्यारे भाव में हूं, मैं साक्षीपन की स्थिति में हूं, तो जो मुझे पेपर लगते थे वो कॉमन सीन लगेंगे, सामान्य दृश्य लगेंगे ड्रामा के, वो मुझे मुश्किल नहीं लगेगा। इतनी एक शक्तिशाली स्थिति हमारी बन सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा होता है, इससे जो रिजल्ट आता है, वो ये है कि जब हम सर्व से साक्षी बनते हैं, न्यारापन अंदर से रहता है, तो ऑटोमेटिक बाबा से हर क्षण साथीपन का अनुभव हम कर सकते हैं। सिर्फ बाबा की याद में नहीं, एक है बाबा को याद करना और एक है अपने साथ हर क्षण अनुभव करना। तो बाबा से अगर मैं निरंतर साथीपन का अनुभव करना चाहती हूं, बाबा मेरे जीवन का साथी और सारथी है, ये अनुभव अगर मुझे करना है, तो दो चीज चाहिए, सर्व से साक्षीपन चाहिए, मैं सर्व से न्यारी रहूं, और बाबा से प्रैक्टिकल सर्व संबंध से श्रीमत अनुसार मेरा जीवन चले, तो हमें न बाबा को पुकारना पड़ेगा, न कहना पड़ेगा, लेकिन हर क्षण बाबा के साथ का हम अनुभव कर सकेंगे और हमें महसूस होगा कि बहुत छोटे छोटे मेरे संकल्प भी बाबा संपूर्ण करते हैं, सफल करते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का हमारा लक्ष्य यही है कि हर क्षण बाबा मेरा साथी और सारथी बने। जो भक्ति मार्ग में, महाभारत में जो हम कहानी सुनते हैं कि दुर्योधन ने सब कुछ मांगा कि आपका हाथी दल भी चाहिए, घोड़ा दल भी चाहिए, पायदल भी चाहिए, सारे साधन और सेना, वो दुर्योधन मांग लेता है, लेकिन अर्जुन ने भगवान से यही मांगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे साथी और सारथी बने। तो प्रैक्टिकल में हमारा ऐसा अनुभव रहेगा और अंदर से जब हमारी अपनी भी वो धारणा और पुरुषार्थ की रूपरेखा रहती है, तो सचमुच हम ये अनुभव कर पाते हैं कि कैसे बाबा हर क्षण मेरा साथी है और मेरे जीवन का सारथी है। फिर याद मेहनत का विषय नहीं रहेगा, नेचुरल बाबा याद रहेगा तो हमारा अंदर से बाबा के प्रति इतना प्यार हो, क्योंकि दोनों तरफ से हमें पुरुषार्थ करना होगा, एक है अंदर से बाहर और एक है बाहर से अंदर, ये दोनों तरफ से हमें पुरुषार्थ करने होंगे। हमारा बाहर से अंदर तरफ का पुरुषार्थ ये है कि हम बाहर से भी ये डिटैचमेंट न्यारापन बनाए रखें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बाबा के समीप आए। और अंदर से बाहर का पुरुषार्थ ये है कि मेरा अंदर से बाबा के प्रति इतना प्यार हो कि मैं स्वतः सब बातों से न्यारी हो जाऊं। ये दोनों तरफ के पुरुषार्थ हमें करने होंगे, और ये दोनों तरफ के जब पुरुषार्थ हम अपने आप में रखते हैं तो रिजल्ट में हमारी इतनी अतींद्रिय आनंद की स्थिति बनी रहेगी जो गायन हम करते हैं कि बाबा की याद में आत्मा सुख का अनुभव करे, इस परिवार में रहते हुए, सेवा में रहते हुए वो अनुभव हम कर सकते हैं। तो हम कुछ क्षण उस अभ्यास की ओर जाएंगे। पहले हम अपने आप से न्यारे और फिर इस दुनिया से न्यारे और बाबा के प्यारे, तीन स्टेज में हम अभ्यास करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। एक एक इंद्रियों के रस, ये गृहस्थी है, अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति आते ही मैं इस देह के विस्तार से न्यारी हो जाती हूं। मेरा निजी सत्य और शुद्ध स्वरूप जो मुझे अपने आप में एकाग्र कर देता है, मैं अपने आप से न्यारी दिव्य प्यारी आत्मा हूं। मैं स्वामी एकाग्र हूं। मुझे अपने स्वरूप में ही आनंद है। जैसे ही प्यारे बाप दादा से। मैं योग युक्त होती हूँ, मैं संसार से न्यारी हो जाती हूँ, मेरी सर्व संबंध एक बाप से है, वो ही मेरा सर्वस्व है। तुम्हें इस विस्तार से साक्षी हो जाती हूँ, अब मैं साक्षी बनकर संसार को देखती हूँ, मुझे अनोखापन दिखाई देता है, मुझे इस विस्तार में भटक जाने का भय नहीं है। मैं आंतरिक रूप से उस सार से जुड़ी हुई हूँ, मैं देह से डिटैच, बाबा से अटैच हूं। मैं आपस में सिंगल बाबा से डबल हूं। मैं स्वामी स्थित होकर संसार को देखती हूं तो हर दृश्य मुझे मीनिंगफुल नजर आता है, और जब बाबा से जुड़कर मैं हर दृश्य को देखती हूं तो हर दृश्य आनंददायक लगता है।
अनुभव होता